नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं का स्रोत पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन से निर्धारित होता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रक्षा खरीद के बारे में नई दिल्ली में ये बात कही। प्रवक्ता ने ऊर्जा स्रोतों के संबंध में कहा कि भारत बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। भारत रूस संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध अपने अपने गुणों पर आधारित होते हैं और इन्हें किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
Our ties with any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership.
पूर्व अमरीकी उप वाणिज्य मंत्री रेमंड विक्री ने कहा कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति उसे टैरिफ के दबावों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने वाली नीतियों को अपनाने का भरोसा देती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ उपायों के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि ट्रंप की व्यापार नीतियों की अप्रत्याशित प्रकृति दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल कर देती है। श्री विक्री ने कहा कि भारत के प्रति ट्रंप का रुख उसकी आर्थिक क्षमता के प्रति असम्मान और एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो मध्यम या दीर्घकालिक साझेदारी के लाभों को पहचानने में विफल रहा है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी लंबित मुद्दों पर चर्चा केवल द्विपक्षीय आधार पर होगी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति समेत सभी देशों को ये बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सीधी बातचीत हुई थी। युद्ध विराम का अनुरोध पाकिस्तान ने किया था। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। हसन जिले में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के चार मामलों में से यह एक है और सजा आज सुनाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में कल देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान शुरू किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ होने की पुष्टि की है। हालांकि अंधेरे के कारण चल रहा अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया जो आज सुबह उजाला होते ही फिर से शुरू हो सकता है। ब्यौरा की प्रतीक्षा है। जर्मनी की सेना ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया है। जर्मनी की वायुसेना के विमानों द्वारा कुल 14 टन खाद्य और चिकित्सा सामग्री गजा पहुंचाई गई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गजा को हर महीने 62,000 टन सहायता की आवश्यकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस ने कहा कि हवाई सहायता से केवल सीमित राहत ही मिल पाती है। उन्होंने गजा की स्थिति को जीवन यापन के लिए बेहद मुश्किल बताया। अफगानिस्तान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की एक ताजा रिपोर्ट में संकट ग्रस्त 53 देशों में अफगानिस्तान को सबसे ऊपर बताया गया है, जहां कुल 29,50,00,000 लोग भुखमरी के शिकार हैं। गंभीर गरीबी और ईरान तथा पाकिस्तान से लौटने वाले प्रवासियों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली इंडोनेशिया के अलवी फरहान और मलेशिया के जस्टिन होहो पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। यह मैच आज खेले जाएंगे। महिला एकल में डेनमार्क की लिन क्रिस्टोफरसन और जापान की रिको गुंजी चीन की यू फेई चेन और चीनी ताइपे की सियांग टी लिन ने अंतिम चार में जगह बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।